यरमिया अध्याय 12। यरमिया परमेश्वर का संदेश देने से चूका नहीं है, वो परिस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। वो दुष्ट आहाज राजा के बारे में कहता है और वो कहना आरंभ करता है। यरमिया अध्याय 12 पद 1। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। वो एक ऐसे आधार या नेव से आरंभ करता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जान रखो कि परमेश्वर धर्मी है और निष्पक्ष है। मैं परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के न्याय के औचित्य को कभी समझ नहीं पाऊंगा। मसीही विश्वासी होने के कारण हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर प्रेम है। मुझे संसार में हो रही बहुत सी बातों को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि यदि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है तो वो इन घटनाओं को संसार में क्यों होने देता है। यदि परमेश्वर निष्पक्ष प्रभु है और न्यायोचित है तो दुष्ट क्यों फलते हैं और उनकी समृद्धि अत्यधिक होती है और धर्मी जन अधिकांश समय हानि और कष्ट उठाते हैं। यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं सब धर्मियों को आशीष देता और सब दुष्टों को पकड़कर बंद करता, परंतु मैं ये इसलिए सोचता हूं कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मनुष्य मुझसे प्रेम करता है। वे केवल इसलिए प्रेम जताएंगे कि मैं उन्हें दंड ना दूं। यदि सब धर्मियों को आशीषें और महान समृद्धि प्राप्त हो तो शैतान वैसा ही कहेगा जैसा उसने आयुब के संबंध में परमेश्वर से कहा था। क्या आयुब तुझे निस्वार्थ प्रेम करता है? देख, तूने उसे कितनी आशीषें दी हैं। यदि तू किसी को ऐसी आशीष देगा तो वो तेरी आराधना करेंगे ही। तुझे क्या मालूम कि आयुब तुझसे वास्तव में प्रेम रखता है? तू तो ये भी नहीं जानता कि आयुब तेरा वफादार है या नहीं। वो तो किराए का टट्टू है, उसमें युक्ति है। तू उसे आशीषों से पूर्ण करता है तो वो तेरी आराधना करता है और तेरा स्तुति गान करता है। इसका कारण है वो समृद्धि जो तूने उसे प्रदान की है। मैं एक दिन किसी धनी व्यक्ति से बातें कर रहा था। हम साथ साथ भोजन कर रहे थे। वो मुझे अपनी परेशानियों के बारे में कह रहा था। उसकी परेशानियों का कारण था कि वो अनेक स्त्रियों से संबंध बनाए हुए था, परंतु उसकी समस्या ये थी कि क्या वे उससे प्रेम करती थी। वो व्यक्ति कह रहा था कि उसे अपने अच्छे वस्त्र उतार कर जीन्स पहन लेना चाहिए और अपनी महंगी कार और नावों को अलग रखकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री की तलाश में था जो उससे प्रेम करती हो, ना कि उसके पैसों से। उसने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। उसने कहा, वे सब जानती है कि मैं कौन हूं, वे जानती है कि मेरे पास क्या है, इसलिए जब वे आकर मुझसे मुस्कुराकर बातें करती है तब मैं समझ जाता हूं कि वे मुझसे प्रेम जता रही है या मेरे पैसों से। ये तो एक कठिन समस्या है। यदि परमेश्वर सब धर्मियों को आशीष दे और सब दुष्टों को श्राप दे तो उसके सामने भी यही समस्या खड़ी हो जाएगी। वो जान नहीं पाएंगे कि आप उसे वास्तव में प्रेम रखते हैं या नहीं। परंतु जब मैं भला जीवन व्यतीत कर रहा हूं और बुराइयां आती हैं, तदोपरांत मैं उसे प्रेम रखता हूं। मैं उसे बुरा भला नहीं कहता कि परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है और मैं मूर्खता भी करता हूं, तब मैं परमेश्वर से कहता हूं, ओ परमेश्वर, और मैं उसे बुरा भला कहने लगता हूं। इस प्रकार वो जान लेता है कि मैं उससे सच्चा प्रेम रखता हूं या नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर मुझे आग से होकर जाने देता है और मैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करता हुआ कहता हूं, प्रभु मैं तुझसे अब भी प्रेम रखता हूं। मैं तुझसे आशीषों के कारण प्रेम नहीं रखता, मैं तो तुझसे इसलिए प्रेम रखता हूं कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तेरे कारण मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर जान लेता है जब हम अपनी प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं और उससे प्रेम प्रदर्शन तथा उसकी भक्ति में लग जाते हैं। परमेश्वर हम पर कष्ट आने देता है, वो हम पर समस्याएं आने देता है, वो दुष्ट को समृद्ध होने देता है, क्योंकि वो भाड़े के टट्टू पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि लोग लाभ के कारण उसकी आराधना करें, परंतु इसलिए करें कि वो परमेश्वर है। यहां यरमिया इसी बात से संघर्ष कर रहा है, परमेश्वर मैं जानता हूं तू धर्मी है, प्रश्न ये नहीं है, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। मनुष्य प्रायः एक भूल करते हैं, वे परमेश्वर को चुनौती देते हैं और कहते हैं, यदि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है तो परमेश्वर क्यों? ये परमेश्वर को चुनौती देना ही हुआ। यदि आप आकर कहे, परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू प्रेमी परमेश्वर है, परंतु मैं निश्चय ही ये नहीं समझ पा रहा हूं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, ये तो उचित स्वभाव है। परमेश्वर इसे स्वीकार करता है। यदि आप उसके प्रेम को चुनौती ना देते हुए ऐसा कहे, आप अपने जीवन की परिस्थितियों को चुनौती दे सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम रखता है, परंतु प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है। ऐसी स्थिति में संभव है कि परमेश्वर आपको बता दे कि ऐसी क्या स्थिति है जिससे वो आपके जीवन में सुधारना चाहता है, परंतु परमेश्वर को चुनौती देना निश्चय ही अनुचित है। कदापि ना कहे, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है। आयुब की कहानी में हमें देखने को मिलता है कि सब दुखों में भी आयुब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया या परमेश्वर पर मूर्खतापूर्ण आरोप नहीं लगाया था। आप परमेश्वर पर मूर्खता भरे दोष लगा सकते हैं, परंतु हमें सावधान रहना है कि हम परमेश्वर पर झूठे आरोप ना लगाएं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि देखो क्या हो गया है। अतः परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू धर्मी है, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं। यरमिया अध्याय 12 पद 1 और 2। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। यहो आहाज सिंहासन पर बैठता है, वो दुष्ट है, ऐसा लगता है कि उसे वहां रखा गया है। परमेश्वर मैं समझ नहीं पाता हूं, यहां एक भला और धर्मी जन योशिय्याह है जिसका नाश हो गया और तू इस दुष्ट को सिंहासन देता है। वो परमेश्वर के विषय में चर्चा तो करता है, परंतु उसका जीवन समर्पित नहीं है। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके जीवन से बहुत दूर है। यरमिया अध्याय 12 पद 3। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। ये तो ऐसी बात है कि हम सब कह सकते हैं, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है। आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 स्मरण होगा कि यीशु अपनी कलीसियाओं से क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन को परख कर देखा है। परमेश्वर मन को परख कर देखता है। पिछले अध्याय के पद 19 में यरमिया कहता है, मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं यहां हूं प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तेरी सेवा करता हूं, मैं तो तेरा संदेश इन लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और मैं तो भेड़ के उस बच्चे का सा हो गया जिसे वे मारना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं तेरे नाम में अब से आगे भविष्यवाणी करूंगा तो वे मुझे जान से मार देंगे। प्रभु, ये है वो दुष्ट, उसे वध के लिए तैयार कर, मुझे नहीं। यरमिया अध्याय 12 पद 3 और 4। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नाश हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वो हमारे अंत को ना देखेगा। उन्होंने परमेश्वर को अनदेखा किया, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवनों से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर उत्तर देता है, तू सोच रहा है कि समय कठिन हो गया है, अभी तो और अधिक कठिन समय आएगा। यरमिया अध्याय 12 पद 5। तू जो पायदों ही के संग दौड़कर धावकों के दौड़ में, यरमिया अध्याय 12 पद 5 में आगे लिखा है, थक गया है, तू घोड़ों के साथ कैसे दौड़ेगा? यदि तू इन छोटी छोटी बातों में थक जाएगा तो कठोर परिस्थिति में क्या करेगा? मैं विश्वास करता हूं कि परिस्थिति सुधरने से पहले अधिकाधिक कठिन होती जाएगी। मेरे विचार में हमारा समाज, हमारी जीवन शैली और संस्कृति अपनी शिखर तक पहुंच चुकी है और अब वो पतन के मार्ग पर है। अपनी अपनी ऊर्जा और संसाधनों को पहले जैसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। हमें अपने ईंधन के बारे में तो त्याग करना ही होगा। हम संसार में भूखों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन नहीं कर रहे। जो जो भूखों की संख्या बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारे आपूर्ति भंडारों पर खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जाएगी। आज तीसरे विश्व और उसकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। समृद्ध मनुष्य को अपने आमोद प्रमोद में कटौती करनी होगी। परिस्थिति अधिकाधिक कठिन होती जाएगी और सुधारने से पूर्व वे बहुत कठिन हो जाएगी। अब यदि आप धावकों के साथ भागकर थक गए हैं तो आप घोड़ों के साथ भागते समय क्या करेंगे? यदि आप समतल भूमि पर भागते भागते थक गए हैं तो आप यर्दन की दलदल में क्या करेंगे? यहां परमेश्वर वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, प्रभु दुष्ट क्यों फलता फूलता है? मैं तो एक धर्मी मनुष्य हूं और वे मुझे जान से मार डालने की धमकी देते हैं, ऐसा क्यों प्रभु? परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। वो केवल कहता है, यरमिया, अभी कठिन परिस्थितियां नहीं आई है, अभी तो परिस्थितियां बहुत कठिन होगी, तब तू क्या करेगा? परमेश्वर ने स्वीकार किया कि यिर्मयाह दौड़ रहा था। तू पायदों के साथ भाग रहा था, तू निश्चय ही भाग रहा था। तू कैसे ये करने में सक्षम था? तू यहोवा के बल और अगुवाई में दौड़ रहा था। यही बल और अगुवाई जो तुझे अब तक प्राप्त हुई है, तुझे घोड़ों के साथ दौड़ते समय भी प्राप्त होगी। तुझे परमेश्वर में भरोसा रखना है। परमेश्वर हम सबको प्रशिक्षण देता है। बाइबल में लिखा है एफिसियों अध्याय 2:10, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को भविष्य के लिए प्रशिक्षण देकर तैयार करता है। परमेश्वर की संतान को जिस परिस्थिति का सामना करना होता है उसके लिए परमेश्वर उसे तैयार करता है। परमेश्वर जानता है कि आप भविष्य में किसका सामना करेंगे, अतः वो आपको प्रशिक्षण देता है। वो आपको कभी भी आघात और आश्चर्य की अवस्था में किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देगा। वो आपको उसी स्थान पर लाएगा जो उसने आपके लिए तैयार किया है। उसने इस्राएल के वंशजों को रेगिस्तान का अनुभव प्रदान करने के बाद कहा, तुमने जहां भी डेरा डाला मैं तुमसे आगे चला कि तुम्हारा डेरा डालने के लिए स्थान तैयार करूं। ये मेरे मन को भाता है। परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है कि वो मेरा डेरा डालने के लिए स्थान तैयार करे। मैं उस स्थान पर कभी नहीं पहुंचूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार ना किया हो। वो मेरे आगे आगे चलता है कि जगह तैयार करे। दूसरी ओर वो मुझ में भी काम कर रहा है कि वो मुझे उस स्थान के लिए तैयार करे। अतः परमेश्वर हम सब में जो उसकी संतान है काम कर रहा है कि हमें आने वाले अति कठिन दिनों के लिए तैयार करे। वो जानता है कि हम पर कैसी कठिनाइयां आएंगी। वो हमें उस पर भरोसा रखने का प्रशिक्षण दे रहा है, उसमें विश्वास रखने का प्रशिक्षण दे रहा है, हमें विश्वास के सबक सिखा रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि हम जाने परमेश्वर हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें पार ले जाएगा। कुछ भी आए प्रभु मेरे साथ होगा और मेरी सहायता करेगा। मुझे शिक्षा और प्रशिक्षण देने का कारण यह है कि एक दिन मैं घोड़ों के साथ दौड़ूंगा, परंतु यदि मैं पायदों के साथ नहीं भागता हूं तो मैं घोड़ों के साथ भाग नहीं पाऊंगा। परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है, अतः ये छोटी छोटी परीक्षा एवं परख जिनमें से होकर आप निकल रहे हैं वे सब परमेश्वर के काम का एक भाग है जो वो आपके जीवन को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जो हमारे अतीत के अनुभवों से और अधिक कठिन होगा। ये यिर्मयाह को परमेश्वर का उत्तर था। राष्ट्र का पतन हो रहा था और यिर्मयाह देख रहा था। वो ये भी देख रहा था कि दुष्टों के नियंत्रण में उसका राष्ट्र पतन के मार्ग पर था। परमेश्वर, तूने दुष्ट को समृद्ध होने क्यों दिया? तूने दुष्ट को प्रभुता करने क्यों दी कि वो जनता की विनाश में अगुवाई करे? परमेश्वर कहता है, अपना पटु का बांध, अभी और अधिक दुमार्ग स्थिति आने वाली है। तू पायदों के साथ दौड़ रहा था, तू थक गया, परंतु तुझे तो शीघ्र ही घोड़ों के साथ दौड़ना है। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, तुझे दृढ़ रहना है। मैं तुझे पार लाऊंगा, मैं तुझे उभारूंगा, परंतु तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा और निर्भरता रखना है। यिर्मयाह अध्याय 12:6, क्योंकि यिर्मयाह तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी मेरा विश्वासघात किया है। तेरे घराने के लोगों ने, तेरे साथ के लोगों ने और तेरे ही खून ने विश्वासघात किया है। यरमिया अध्याय 12 पद 6 में आगे लिखा है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं, यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें तो भी उनकी प्रतिति ना करना, यदि वे आकर स्नेह दर्शाए तो भी उन पर विश्वास ना करना। वे तेरे घात करने वालों के साथ है। अब परमेश्वर इसराइल राष्ट्र के बारे में कहता है, यरमिया अध्याय 12 पद 7, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है, मैंने अपने प्राण प्रिय को शत्रुओं के वश में कर दिया है। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर देखिए किस चिंता से इसराइल के लिए कह रहा है, अपनी प्राण प्रिय, अर्थात परमेश्वर उनसे अब तक प्रेम करता है। आपको ध्यान होगा कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया था और उसने यीशु से पूछा था, मुझे युगान युग का जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु ने कहा, आज्ञाओं का पालन कर। उसने पूछा, कौन सी? यीशु ने उससे उन आज्ञाओं के बारे में कहा था जो मनुष्य से व्यवहार संबंधित थी। उसने कहा, उसने तो युवा अवस्था से उनका पालन किया है और अब शेष क्या करना है? यीशु ने कहा, परिपूर्णता का जीवन पाने के लिए अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वहां लिखा है कि वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। मनुष्य सोचता है कि उसके पास बहुत संपत्ति होने से वो आजीवन आनंद प्राप्त करता रहेगा। तो यहां एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि असीम संपत्ति मनुष्य को दुखी कर देती है। ध्यान दीजिए, वहां क्या लिखा है कि यीशु को उस पर तरस आया। इस मनुष्य में कोई ऐसा गुण अवश्य था जिसने यीशु को उसकी ओर आकर्षित किया। यीशु ने उसके मन की सच्चाई को देखा था, परंतु वो मनुष्य कीमत ना चुका पाया। निश्चय ही वो दुखी होकर चला गया, परंतु निकटता से देखिए कि यीशु कितना दुखी था, क्योंकि यीशु उससे प्रेम करता था। यहां परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए लिखता है कि उन्होंने उसको त्याग दिया है, वे बर्बाद हो रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है, परंतु परमेश्वर उन्हें प्राण प्रिय कहता है। ओह, उसका प्रेम कैसा महान है। यरमिया अध्याय 12 पद 8 और 9, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिम के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गर्जा है, इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चिति वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? चिड़िया हो या मुर्गी, वे अति निर्दयी होती है। यदि उसका चूजा है जो किसी कारणवश अपंग पैदा है तो वो उसे चोच मार मार कर मार देती है। परमेश्वर कह रहा है कि इसराइल चोच मारे हुए चूजे के समान बन गया है। यरमिया अध्याय 12 पद 9 और 10, क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाए। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ कर दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग को सुनसान जंगल बना दिया है। चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया। आज के प्रसंग में ये वचन कितना सत्य सिद्ध होता है। चरवाहे जो पास्टर बने बैठे हैं, वास्तव में मसीही की भेड़ों को उसकी दाग की बारी को उजाड़ रहे हैं, भेड़ों को गुमराह कर रहे हैं। यरमिया अध्याय 12 पद 11, उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजाड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है तो भी कोई नहीं सोचता। मेरे विचार में आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि हम एक निराशाजनक संसार में वास कर रहे हैं। हमारे समाज की अनैतिक अवस्था पर ध्यान दीजिए, नैतिक वातावरण पर ध्यान दीजिए, बिगड़ता ही जा रहा है। आर्थिक स्थिति पर ध्यान दीजिए, कैसी निराशाजनक। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखिए, निराशा ही निराशा दिखाई देगी। हथियारों की स्पर्धा पर ध्यान दीजिए, है कोई आशा। परंतु परमेश्वर के जन वे निराश नहीं है। मेरे विचार में समय आ गया है कि इन बातों पर मन लगाए और परमेश्वर के समक्ष निराशा व्यक्त करे, क्योंकि ये वो समय है जब हमें अधिक से अधिक फसल काटनी है। एकत्र होकर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जागृति लाए कि हमारा राष्ट्र अपनी नाभि तक हिल जाए, क्योंकि हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चिंता का विषय तो यह है कि किसी को चिंता नहीं है। परमेश्वर की चिंता का मुख्य विषय यही है कि ये एक गंभीर समस्या है। परिस्थिति बिगड़ती जा रही है और किसी का मन विचलित नहीं है। हम कहते हैं, ओह कैसे बुरे हालात हैं। बस यही, हम परमेश्वर के समक्ष आकर निराशा व्यक्त नहीं करते हैं कि परिस्थिति कैसी गंभीर है। कोई भी मनुष्य इसे अपने मन में रखकर गहराई से विचार नहीं कर रहा है। यरमिया अध्याय 12 पद 12 से लेकर 16 तक। जंगल के सब मुंडे टिलों पर नाशक चढ़ आए हैं, क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उसे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध के भटकने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इसराइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हरेक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। और यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परमेश्वर ने शपथ खाई है कि वे उन्हें उनके देश से निकाल देगा, वे बाहर रहेंगे। यरमिया आगे चलकर कहता है कि वे 70 वर्ष तक बाहर रहेंगे। परंतु परमेश्वर ये भी कहता है, यरमिया अध्याय 12 पद 17, परंतु यदि वे ना माने तो मैं उस जाति को ऐसे उखाड़ूंगा कि वो फिर कभी ना पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है। यदि वे लौट आए और मेरी आज्ञाओं को माने तो उनका पुनरुद्धार होगा, अन्यथा अनंत विनाश।